जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आयोजन में आज हमारे को यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा अपने जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में करनी है। इतना तो हम सब जानते ही हैं कि इस जगत में चार गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। और यह भी हम जानते हैं कि इन चारों में से हम लोग मनुष्य पर्याय में हैं, हमारी अवस्था मनुष्य अवस्था है वर्तमान में। आप जानते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कैसे हुई है? आसान नहीं है मनुष्य पर्याय की प्राप्ति का, लेकिन कहते हैं जो चीज मिल जाती है उसके बाद में उसकी दुर्लभता या उसकी निर्माण आप बहुत होतियां होंगी। छोटे छोटे से बच्चे जिद करते रहते हैं किसी भी चीज को लाने के लिए, मुझे ये गेम चाहिए चाहिए बस। और आप जब तक नहीं दिलाएंगे तब तक रोजाना आपको बार बार में उसको कहेंगे तो फिर आप मेरे को ये दिलाओगे क्या? फिर मेरे को ये मिलेगा क्या? माने उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं। और जब वो चीज उनके हाथ में आ जाती है तो आप ये भी बहुत बड़ी प्रकार जानते हैं माने जब तक नहीं मिली है तब तक तो उसकी बहुत महिमा है, और जब मिल गई है तो उसके बाद में उसकी पहले हमने अनंत जन्म बिताए हैं। हमारी यात्रा निगोध दशा से प्रारंभ हुई है। इतना तो हम जैन होने के नाते जानते ही हैं कि ये जीव अभी नया जन्म नहीं लिया है इसने, कि पहले भी कहीं था, उससे पहले भी कहीं था, उससे पहले भी कहीं और था। और यहाँ जो कुछ भी अंतर वर्तमान में दिखाई देता है, एक बालक का जन्म बहुत अच्छे वैभव संपन्न घर में होता है, जहाँ जन्म होते ही उसको सोने की चम्मच से पानी पिलाया जाता है, और एक बालक का जन्म हिंदुस्तान के किसी फुटपाथ पर होता है, किसी गली में किसी झोपड़ी में होता है, उसको खाने के लिए व्यवस्था नहीं होती, दूध पीने की उसके पास में व्यवस्था नहीं होती, पहनने के लिए उसके पास में कपड़े नहीं होते। ये आज जन्मे हुए दो बालक, ये क्या किया उन्होंने? हम कहते हैं ये सब पुण्य पाप,
अभी तो उसने कुछ नहीं किया ना, तो ये जन्म से ये ऐसा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? पिछले भाव से सीधी सी बात है, इसमें क्या है? इसने पिछले भाव में जैसा कर्म किया होगा
हाथ पैर नहीं है, एक बहुत सुंदर होता है, एक बदसूरत होता है, एक काला होता है, एक गोरा होता है, एक अमेरिका में जन्म लेता है, एक अफ्रीका में जन्म लेता है, कि क्यों है ऐसा अंतर? तो इस अंतर का एक ही कारण दिखाई देता है, पूर्व जन्म। तो वहाँ जो परिस्थितियाँ थी उसके पहले, उससे पूर्व जन्म। इसका मतलब यह बात तो निश्चित है कि ये जीव का यहाँ एक पहला जन्म नहीं है, इसके पहले इसने बहुत जन्म लिए हैं। तो मैं पूछता हूँ स्टार्टिंग कब से हुई होगी? स्टार्ट कब किया आपने? अभी तो स्टार्ट किया होगा कि नहीं? स्टार्टिंग हुई नहीं थी, कि जब जैसा भी स्टार्ट किया इसने उस समय की परिस्थितियां किस कारण से थी बताइए। उसके मतलब उसके पहले ये तो समय जो है ये कभी खत्म नहीं होता है। हम आपसे पूछें कि सूर्य उदय होना, दिन रात होना, ये कब से चल रहा है? स्पष्ट दे बतला सकते हैं आप कि इस दिन के पहले सूर्य नहीं था, इस दिन के पहले दिन नहीं था, इस दिन के पहले कोई टाइम नहीं होता था? ये तो चलता ही रहा है। अनादि काल हो गया, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसी तरह से हमारे जन्म मरण भी अनादि काल से हो रहे हैं। अनंत काल हमने अपना निगोद दशा में बिताया है, निगोद अवस्था में। हमारे को बहुत महिमा आती है, कुछ भी उपलब्धि यदि हमारे को होती है तो
कोई भी बड़ी चीज यदि हमारे को मिल जाती है, कहीं किसी जगह पर हमारा कलेक्शन हो जाता है, मजा आ जाता है, जिसको हम चाहते हैं अपना हो जाए या अपने बच्चों का हो जाए, मेरिट में नाम आ जाए। बहुत टफ था, पता है
उसने हमारे बेटे ने टॉप किया है, सबने वो कितनी महिमा आती है उसकी, 1000 लोगों में एक, और 10000 लोगों में एक हो तो, और 1 करोड़ में एक हो तो कैसा लगता है अपने को, कितनी महिमा आती है हमारे को, करोड़ों अरबों में एक आधे है। अरे भाई साहब आपको पता नहीं है आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है। नित्य निगोद में अनंतानंत 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 जीव राशि थी नित्य निगोद अवस्था में, और नित्य निगोद में जहाँ अनंतानंत जीव थे उनमें से सिलेक्शन होना था मात्र 608 जीवों का, 6 महीने 8 समय में हमारा नंबर लग गया अनंतानंत में से 608। आप समझ सकते हैं कितना दुर्लभ हो, कितना कठिन होगा वो काम, लेकिन हमने उसको क्लियर किया और हम वहां से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय में आ गए। नित्य निगोद से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय पृथ्वी एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ। मैं यदि आपको बतलाऊं एक इंद्रियों की तुलना में 2 इंद्रियों की संख्या कितनी है तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको कितना कठिन है। ये तो हम सब जानते हैं जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, निश्चित बात है। हीरे की कीमत ज्यादा है और सब्जियों की कीमत कम है, उसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि सब्जियां खूब होती है। एक गांव में हीरे की दुकान मिलना बहुत दुर्लभ है। अरे एक गांव में क्या बात करें, सैकड़ों गांवों में भी हीरे की दुकान मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन सब्जियों की दुकान एक एक गांव में सैकड़ों हो सकती है। किसकी कितनी कीमत होगी? जो चीज जितनी कठिनता से प्राप्त होवे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है, उसकी कीमत उतनी ज्यादा है। मनुष्य जीवन कितनी कठिनता से प्राप्त हुआ है और मनुष्यों की संख्या कितनी कम है, इससे उसकी महिमा है। जितने और राइट साइड में सब त्रस्त जीव है, देव सब राइट साइड में है। अब क्या करना है महेंद्र भाई? मैंने एक साइड में एक इंद्रिय ले लिए और दूसरी साइड में बाकी त्रस्त जीवों को ले लिया, अब क्या करें? अब हम ये कहते हैं इधर से एक इंद्रिय जीवों में से अनंत जीव लो और उठा करके सामने रखो, और इधर त्रस्त जीवों में से सिर्फ एक त्रस्त जीव तो उठा करके सामने रखो, फिर इधर से अनंत एक इंद्रिय जीव सामने और इधर से एक त्रस्त जीव, फिर अनंत एक इंद्रिय जीव, फिर एक त्रस्त जीव, अनंत एक इंद्रिय एक त्रस्त, अनंत एक इंद्रिय एक त्रस्त, अनंत एक इंद्रिय एक त्रस्त, अनंत एक इंद्रिय एक त्रस्त। थोड़े समय बाद में आप देखेंगे एक इंद्रिय तो अनंत के अनंत बने हुए हैं, अनंत अनंत, और त्रस्त तो खत्म। आप समझ रहे हैं क्या है वस्तु स्थिति? एक एक त्रस्त पर्याय अनंत अनंत एक इंद्रिय जीवों की बराबरी करने में अनंत
एक हमारा कलेक्शन हो गया वहां भी, अनंत जीवों से भी एक का कलेक्शन होना था दो इंद्रिय पर्याय में आने के लिए।
वहां भी हम क्लियर। इंद्रिय पर्याय में असंख्यात जीव हैं, बहुत कम लोग तीन इंद्रिय पर्याय में आ पाते हैं। दो तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हुई, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हुई। पंचेंद्रियों के अंदर भी नारकी त्रियंच देव बहुत हैं, असंख्यात असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याय लिमिटेड है, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई हमारे को अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय में भी अन्य दूसरे आप समझिए, ईसाई धर्म के संदर्भ में तो ऐसा कहते हैं दुनिया में इतने क्रिश्चियन हैं कि हर तीन में एक व्यक्ति क्रिश्चियन है, इतनी संख्या बतलाते हैं। जैनियों की संख्या ही बहुत कम है अपने आप में। तो जैन कुल में जन्म ले लेना, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ये मनुष्य पर्याय यदि हमारे को प्राप्त हो गई है, जो इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इतनी कठिनता से प्राप्त हुई है, यदि ये एक बार जो ये जितनी कठिनता से प्राप्त होती है, चले जाने पर होने वाला दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। आप बिल्कुल ऐसा समझिए, आप किसी जीव को किसी चीज की तलाश है, किसी व्यक्ति हमें किसी चीज की तलाश है, हमने कोई चीज देखी देखी यूरोप में देखी, किसी जगह पर हम वहाँ घूमने के लिए गए थे, हमने वो चीज वहाँ देखी, हमारे को इतनी अच्छी लगी, माने बहुत चमत्कारिक चीज थी, और हमारा मन हुआ कि हम इसको ले लें। उस समय हमारे जेब में काम नहीं किया, जो कुछ भी था हमने कहा घर जाकर के फिर ऑर्डर कर देंगे और मंगा लेंगे। उसके बाद में जब हम घर पहुंचने के बाद में हमने ऑर्डर किया तो उसने कहा कि आउट ऑफ स्टॉक, नहीं मिली नहीं हमारे को। हमारे को इतनी इच्छा हुई उसे प्राप्त करने की, हमने उसके लिए जगह जगह कोशिश की, इंटरनेट पर सर्च किया, लोगों से पूछा, जानकारी लेने की कोशिश करी। मानो उसे प्राप्त करने के लिए जहाँ जाते हैं हर एक दो साल नहीं, पांच साल नहीं, 25 साल हो गए हमारे को। यार वो चीज थोड़ी ही देर बाद में आपका 3 साल का बेटा उसे उठा क्या है, आप पूछ सकते हैं इस चीज के, कल्पना कर सकते हैं क्या होगा, क्या हुए। मैं जिस चीज को रहा था, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए 25 साल हो गए मेरे को, दिन रात एक कर दिए मैंने, और ये तो छोड़ दिया, कितना गुस्सा आएगा अपने को। ये मनुष्य पर्याय अनंत अनंत जन्म लेने के बाद में, अनंत अनंत जन्म लेवे ये जीव, तब जा करके एक बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। और यदि ये ऐसे ही चला गया मुफ्त में तो पता भी नहीं लगेगा हमारे को कब चला गया, कैसे गायब हो गया, किसी को याद आती है मरने के बाद में। ना मिले सुमणी जो उदधि समानी, समुद्र में हम जा रहे हैं, मान लीजिए क्रूज प्रोग्राम हमने लिया है, और कदाचित ऐसा हो कि हम वहाँ जाते जाते और हाथ ऐसे पानी में हिलाया हमने समुद्र में, और हीरे की अंगूठी ना मिले, ऐसा कितने एक बार यदि ये चला गया ना मिले, मिले। वहाँ बहुत अच्छे जैन मंदिर हैं, वे हर संडे को एवरी संडे वो वहाँ दर्शन करने के लिए। उनको एक धोती पहनते थे अपनी जेब में, थोड़ी दूर चलने के बाद में उनको लगा यार मैं भी क्या, उन्होंने पत्थर को निकाल करके वापस फेंक दिया। गए वहाँ दर्शन किए, वापस लौट करके आए। जब घर वापस लौट करके आए और जेब में से तो गई थी, उनको लगा हो रही यार पारस पत्थर था वो, तो देखने के लिए आपको क्या लगता है मिला होगा कि नहीं है? बहुत कोशिश की उन्होंने, ऐसा पत्थर जिस पत्थर से सोना बन जाए, बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, अब नहीं मिला। एक व्यक्ति है सब जगह तलाशने की कोशिश करी, लेकिन एक बार यदि ये चीज चले गई हमारे हाथ से निकल गई तो फिर मिलना कितना दुर्लभ हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं इस मनुष्य जन्म को, क्योंकि जब तक प्राप्त न होंगे तब है। ये सोचे अरे हमको अभी कल्याण कर लेना, है और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर लौट करके कभी नहीं आते इस संसार में। हमारे को जो ये मिल गया है इसकी कीमत समझ लेने योग्य है। एक बार इसकी कीमत समझ ले हम कि कितनी दुर्लभता से मिला था, और छूटने में तो छूट ही सकता है कभी भी, कितनी घटनाएं नहीं घट दुर्घटनाओं की लाइन लगी रहती है। आप न्यूज़पेपर उठा करके देखो, टीवी चैनल खोल करके देखो, अपने ही जानने वाले अपने ही बीच से कितने लोग चल बसे निकल गए, जवान बच्चों का स्वर्गवास हो जाता है। लोग जब ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं, जब हम जिन मंदिर में आने की चर्चा करते हैं, तो यार ये कोई उम्र है क्या धर्म करने की? इस उम्र में कोई धर्म होता है क्या? करेंगे बुढ़ापे में। कभी कभी तो आश्चर्य यह सुनकर के भी होता है, जिनके बाल सफेद हो गए हैं वे भी ये कहते हैं कि ये कोई उम्र है क्या अभी करेंगे, अब कौन सी उम्र का इंतजार कर रहे हैं? जिनके सर में बाल नहीं बचे हैं वे कौन सी उम्र का इंतजार कर रहे हैं अब कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे? नहीं होगा रमेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं होता है। वो भद्रबाहू ने स्वप्न देखे थे, उसने चंद्रगुप्त ने, और चंद्रगुप्त के स्वप्नों में ऐसा आया था, उसने स्वप्न में ऐसा देखा कि दो बैल के बछड़े वो उसने हल के साथ में जोते हुए हैं, और उसका फल जब उसने निमित्त ज्ञानी से पूछा और उसको मालूम चला उस स्वप्न के फल के बारे में, तो बुढ़ापे में जाकर के धर्म करना चाहेगा तो हाँ तो नहीं कर पाएगा। युवा अवस्था से रुचि है जिसमें तीस है, समझ लीजिए जिसने अपना को बदल लिया है वही व्यक्ति धर्म कर पाएगा। नहीं तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे 80 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान में, जो लोग जीवन भर ये कहते रहे कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे, और आज 80 वर्ष की उम्र में उनके जवान से आलू नहीं छूटता है, रात्रि भोजन नहीं छूटता है, और तर्क क्या देते हैं, क्या करें भाई हम तो पराश्रित है, बच्चों के अधीन है, जो बनाते हैं वो खा लेते हैं, मंदिर नहीं जाते दर्शन करने के लिए। 80 साल की उम्र 90 साल की उम्र जिनकी है जैन, कहते रहे अब क्या करें भाई, मंदिर दूर है, चला जाता नहीं है, अब रोज रोज बच्चों को भी परेशान नहीं कर सकते, अब ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। जवानी नहीं हो सकता है, युवा अवस्था में ही हो सकता है। और जो युवा लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, हम उनसे पूछते हैं कि बुढ़ापा आएगा इस बात की क्या गारंटी है? है गारंटी नहीं। आगे कर लेंगे जो लोग ये बात कहते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं आप कब कर लेंगे ये तो बतलाएं हमारे। पास में जब भी कोई लोग आते थे आपकी झगड़े को लेकर के, हुआ क्या, फिर क्या हुआ, सारी बात बतला दी लेकिन उसके फिर क्या हुआ खत्म ही नहीं होता था। खड़े परे जान होकर के चले जाते थे। मैंने सारी फसल इकट्ठी करके एक बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर दूसरी चिड़िया आई और फिर गोदाम में से एक दाना चुगा और फिर फुर्र हो गई, बोले फिर क्या हुआ, अरे फिर एक और चिड़िया आई कि फिर एक दाना लिया और फिर फुर्र हो गई, अरे फिर क्या हुआ, अरे फिर एक चिड़िया फिर फुर्र, अरे फिर फुर्र, अरे फिर फुर्र, अरे फिर फुर्र। राजा परेशान हो गया, बोले तुम्हारी ये फुर्र कब तक चलती रहेगी, आज तक आपकी फिर चलती रहेगी। ये कब तक चलता रहेगा, ये फिर अपना भी तो यही चल रहा है। हम जब भी कहते हैं कि भैया मंदिर आओगे, अभी तो नहीं फिर आएंगे, कब से अभी तो नहीं फिर करेंगे, कब शुरू करोगे आप ये फिर के चक्कर में फुर हो जाएगा, पता है ये जीवन पूरा हो जाएगा, न मालूम कब हमारा ये जीवन पूरा हो जाए, कौन से क्षण, माने सड़क पर चलते चलते दुर्घटना
हुए ऐसी बातें आपने कई बार अपने मुंह से बोली होंगी, कौन सी बात कौन सा वाक्य आज तो मतलब अभी निकला, कभी आपने ऐसा किया है किसी ने, अरे वाह आज के बच्चे आज के बाद समय तो ये भी बहुत अच्छा था,
ये मिल गए आज तो ऐसा होता है कई बार, कभी हुआ है रमेश भाई ऐसा आपके साथ हुआ है भाई जी, ऐसा कभी हुआ है ना, कई बार सबके साथ में हुआ होगा। मैं इस संदर्भ में हमेशा एक बात कहता हूँ, आगे यदि कभी ऐसी घटना दोबारा घट गई तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सिर्फ विचार करना है अपने को। जब कभी ऐसी घटना घटे आप विचार करना, आज तो बच गया बेटा, आगे का कोई भरोसा नहीं है, जो पैर स्लिप आज हुआ है और आज बच गया है शाम तक दोबारा भी हो सकता है, दो चार दिन में, महीने दो महीने में दोबारा भी पैर स्लिप हो सकता है। आज दुर्घटना से बच गए, ऐसी दुर्घटना कभी दोबारा भी हो सकती है, और यदि अब हो गई तो कोई गारंटी नहीं है कि बचेंगे। बुढ़ापा आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कदाचित आ भी गया, एक बात और कहता हूं, कदाचित आ भी गया और आप ये कहते हैं सब धर्म कर लेंगे, तो उस आपने कभी अनुमान लगाया है वो दशा कैसी है, वो बुढ़ापा कैसा है, उस बुढ़ापे अर्ध मृतक तुम बुढ़ापा आधे मरे हुए के समान है, ना जिंदा है और ना मरे हुए हैं। 60 साल की उम्र में आपके भी यहाँ रिटायरमेंट होता है कि नहीं, जॉब से गवर्नमेंट रिटायर करती है कि नहीं, कितने साल की उम्र में 62 में रिटायर कर देती है, पेंशन देती है रिटायरमेंट के बाद में, देती है पेंशन के पहले भी देती है, बाद में मिलती है, और उसमें कुछ काम भी करना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद, कुछ भी नहीं बिना काम किए हुए। बिना काम किए तनख्वाह देते हैं, काम हो नहीं सकता, काम करने के योग्य नहीं बचे हैं आप काम करने लायक नहीं बचे हैं। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि तुम्हारी जगह कोई 22 साल का छोरा आएगा वो तुमसे 4 गुना काम करेगा, तो तुम्हारे को हर महीने तनख्वाह देना भी हमारे को पोसाता है। जिस उम्र के बाद में गवर्नमेंट रिटायर कर देवे, जॉब से रिटायरमेंट मिल जाए, जिस उम्र के बाद में दुकान से बच्चे रिटायर कर देवे, अरे भाऊ जी आप घर में बैठा करो, अब आप धर्म ध्यान करो, मतलब जिस उम्र में कोई काम करने के योग्य नहीं बचे उस उम्र में हम कहते हैं कि धर्म करेंगे, जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, जब कानों से सुनाई नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, भगवान के दर्शन करने के समझ नहीं रहे, भगवान को पढ़ नहीं सकेंगे, और कोई प्रवचनकार विद्वान कुछ सुनाएंगे तो वो कहेंगे और कुछ और सुनेगा और कुछ, अरे कहता है धर्म करेंगे हम उस उम्र में। जब आंख से पड़ेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा ताला, कानों पे पड़ेगा ताला, और सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला। बताओ तो सही जरा, उस वृद्धावस्था के बारे में सोचा है आपने, वो कैसी दशा है, सबकी दशा होती है ऐसी इस वृद्धावस्था में, कान काम नहीं करते, मशीन लगाते रहो आप तो भी काम नहीं करते, महंगी से महंगी मशीन लगाओ, डॉक्टर ये कहते हैं शक्ति नहीं बची है तो करें क्या, अंदर में शक्ति हो तो मशीन काम करे ना, थोड़ा सुनाई देता हो तो उसको बढ़ाया जा सकता है, और बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता हो तो मशीन क्या करेगी। हम लोग आंख से देखते हैं कि चश्मे से देखते हैं, तो आप चश्मे से देखते हो क्या, आंख से देखते हैं पक्का, बिल्कुल देखते तो आंख से ही है, चश्मा तो सहयोग करता है उसमें, यदि चश्मे से दिखाई देता हो तो अंधे व्यक्ति को चश्मा लगाए कितना दिखेगा, लेकिन नहीं दिखता है। एक अंधा व्यक्ति जिस प्रकार चश्मे से भी नहीं देख सकता है तो कौन देख सकता है चश्मे से, जिसमें देखने की कुछ शक्ति हो। हम कह रहे हैं जब आप में शक्ति है धर्म करने की, जब आप में सामर्थ्य है धर्म करने की, तब तो आपने किया नहीं और अब आप कर सकते नहीं, अब आपने करने की सामर्थ्य नहीं। कोई व्यक्ति ये भी कह सकते हैं अरे हाँ बहुत बुरा हुआ, हमने जीवन भर तो किया नहीं और अब हमारी उम्र हो गई है 70 साल, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वे भी तो ऐसा विचार कर सकते हैं कि जितनी बची है कम से कम उसमें तो अपने मनुष्य भाव की को सार्थक किया जा सकता है, और कैसे सार्थक हो सकता है हमारा ये जीवन, सिर्फ चिंतन करने की जरूरत है, इस मनुष्य जीवन को कैसे सफल किया जाए, इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक किया जाए। भर्तरी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, वे कहते हैं ऐसा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जो मनुष्य होकर के जिनके पास में विद्या नहीं है, जो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं, ज्ञान तप करते हैं, देते हैं, न गुणवान है न शीलवान है, ऐसे मनुष्यों के संदर्भ में भर्तृहरि कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके वे इस पृथ्वी के ऊपर भारभूत हैं और मानो मनुष्य मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु होकर के विचरण करते हैं। किस तरह की बात कही है? हम कहते हैं धर्म करने से सब चीजों की प्राप्ति होती है। आज जमाना इतना बदल गया है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट और सब ऐसी चीजें हैं हमारे सामने, इन सब चीजों को देख करके टाइम नहीं मिलता है हमारे को, फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा कहते हैं लोग, अरे राव आपको ये धर्म कर्म की पड़ी है, यहाँ मरने से फुर्सत नहीं मिलती है, क्या बात करते हो आप, मरने से फुर्सत नहीं है हमारे को। मैं उनसे कहता हूँ तुम सही कहते हो, लेकिन थोड़ा सा वाक्य सुधार लो। तुम कहते हो मरने की फुर्सत नहीं है, हम कहते हैं मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, निकोज में चला जाएगा। मरने की फुर्सत नहीं है ना तुम्हारे को, मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, जन्म मरण करता रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा निगोद दशा में। सब सोचे हम लोग सब इतने संपन्न हैं कि आज की तारीख में भी यदि हम सब बंद करें अपना काम धाम सब कुछ, तो शायद जीवन भर अच्छा सा घी में नहाएं, दूध में नहाएं, समझिए आप, अब बादाम खाएं, सिर्फ और सिर्फ बादाम खाएं आप, महंगी से महंगी। छोड़ के जाएंगे उसमें जितनी FD है, जितना बैंक बैलेंस है, जितना लॉकर में है, जो कुछ भी है हमारे पास में है, ये हमारे ऐसी सोच है इस प्रकार की कि कम नहीं होना चाहिए। मेरे लिए यदि FD है या बैंक बैलेंस है 2-5, यदि कदाचित कम होने लगे ना, अरे यार नहीं था इतना तो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या आप उसको साथ में लेकर के जाएंगे, क्या उतने को भोग पाएंगे आप जीते जी, जितना है आपके पास में भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आपकी घटती नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं हमारी आसक्ति टूटती है कुछ ले जाने की। पता है लोग ऐसा कहते हैं जब हम आपसे कहें महेंद्र भाई कि क्यों करते हो आप इतना, अब आपको क्या जरूरत है बिजनेस की, क्यों उलझे हो इन सब कामों में, तो आपकी बात नहीं, दुनिया ऐसा कहती है। एक जगह नहीं, सैकड़ों लोगों से मैंने पूछा है, रमेश भाई लोग अपने लिए कोई नहीं करता, परिवार के लिए करना पड़ता है, पंडित जी मेरे को क्या जरूरत है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, अपनी जिंदगी तो बीत गई, काट ली अपन ने तो जैसे जैसे, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो सच सच बताना, बच्चों के लिए करते हो रमेश भाई, बच्चों के लिए करते हैं ना अपन सब। और कदाचित आगे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाए,
ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ लग जाए, आप अगले भाव में
अपना कमाया हुआ साथ में ले जा सकते हो, तो बच्चों के लिए कितना छोड़ के जाओगे। बोलिए
बच्चों के लिए नहीं, अरे वो तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है,
ले जाने की व्यवस्था होती तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते उनके लिए, क्या हाँ हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम ले जाना चाहें तो भी नहीं ले जा सकते, कंट्रोल के बाहर है वो चीज। तो जब हम ले नहीं सकते हो तो जो है उसके अंदर संतुष्ट क्यों नहीं रहते हो? देखिए असंतुष्टि इस जीव के दुख का कारण है, हम लोगों की सबकी परेशानी का कारण ये है, मनुष्य गति का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, त्रियंचों में तो क्या होता है, पेट भरने तक उनका लोभ सीमित होता है। पेट भर गया एक बार तो 6-8 घंटे के लिए सही भी शांति से चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम पेट भरने की नहीं है, पेटी भरने की है, और वो पेटी भी ऐसी है कि भरती ही नहीं है। करें क्या? अरे ये आकांक्षाएं, ये तृष्णाएं, ये इच्छाएं, इनका कोई अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। आप जिस जगह पर दौड़ रहे हैं, जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, हमारी दिशा ही गलत है सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए श्रीमद जी की वे पंक्तियां बार बार याद आती हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करके सुख जाता दूर है, बार बार याद आती है ये पंक्तियां। सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, फिर सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है। इतना मूर्ख है, इतना बार बार प्रयास करने पर भी, मैं आपसे कहता हूँ एक बार मछली खाने पर यदि आपको सुख नहीं मिला तो दूसरी बार खाने पर कैसे मिलेगा, तीसरी बार खाने पर कैसे मिल जाएगा, बताओ तो सही मेरे पास कैसे होगा। मंथन करे दिन रात जल व्रत हाथ में आवे नहीं, रही रेत तेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के बाण बिन क्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। निज आत्मा के बाण के बिना तो संसार में कहीं सुख नहीं है। कोशिश कैसी चल रही है हमारी? मंथन करे दिन रात जल, पानी पानी का मंथन करें हम भाई के लिए, किस चीज के लिए? घी, घी प्राप्त करने के लिए। घी मिलेगा, घी निकाल लेंगे हम पानी में से, कितनी देर करें? आधे घंटे करने पर घी निकलेगा क्या? और 2 घंटे कोशिश करी तो, और 4-6 घंटे लगे रहे तो, दिन रात लगे रहे वो भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, अरे साहब क्या बात करते हो आप, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हम निकाल लें। अरे भैया निकलेगा कहाँ से? रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, रेत को पेलते रहे तेल प्राप्त करने के लिए, लेकिन तेल निकलेगा कि नहीं? तेल तो छिलों में से निकलता है, कहते गुजराती में तल, वो तो तल में से निकलेगा, तेल तो रेत में से नहीं निकल सकता है। कितनी देर? मंथन करे दिन रात जल व्रत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। एक व्यक्ति पागल खाने में एक दीवार के कान लगा करके कुछ करने लगा, पागल था, उसको देख करके दूसरे पागल लोगों ने दीवार के कान लगा लिए, सुनाई दे रहा होगा। स्टाफ वालों ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ म्यूजिक लगा करके सुने, स्टाफ के लोगों ने भी दीवार की तरफ अपना कान लगा लिया, क्या शायद कुछ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं था। कोई वहाँ के अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आए वहाँ देखने के लिए, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, सारे लोग पागल खाने में यहाँ सब दीवार के कान लगा करके सुन रहे हैं। उसने भी 2-4 सेकंड के लिए दीवार पर कान लगाया, कुछ सुनने की कोशिश की, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। स्टाफ से पूछा कि कुछ सुनाई दे रहा है क्या भैया? कि नहीं नहीं भाई कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो क्या है जब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्या लगे हैं सब लोग यहाँ पर? कुछ लोगों से पूछा, लोगों से बातचीत हुई, पागलों से बातचीत हुई, धीरे धीरे करके उस पहले व्यक्ति तक पहुंच गए जिसने सबसे पहले दीवार पे कान लगाया था, और उससे कहा कि क्या बात है दीवार में से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, हम दीवार पे कान लगा करके खड़े हो यहाँ। उसने नीचे से ऊपर तक देखा, अजीब पागल है, मैं 6 घंटे से सुन रहा हूं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तुम 6 सेकंड में सुनना चाहते हो? अर्थ हुआ, सीधी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है ये बात जो काम 6 घंटे में नहीं हुआ वो 6 सेकंड में कैसे हो सकता है। हम यही कहना चाहते हैं जो काम अनादि काल से नहीं हुआ, पंचेंद्रिय विषयों में सुख भोगने का, उनमें सुख प्राप्ति का, अनादि काल से आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा। जिस इंद्रिय विषय में आज तक सुख नहीं मिला, उस इंद्रिय विषय में अब सुख कैसे मिल जाएगा यदि आज तक नहीं मिला। तो मिलना होता तो पहली बार नहीं मिल जाता, और नहीं मिलना हुआ तो आप अनंत बार कोशिश करते रहे, आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं सकता। जो संपदा नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान भिन्न क्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। कितनी कोशिश करते रहे, कभी कभी ऐसा लगता है कि धन और पैसा हमारे दिमाग में, डॉलर इतने हावी हुए हैं हमारे दिमाग में कि ऐसा लगता है कि बस जैसे यही सुखी होने का एकमात्र मार्ग बच गया हो। लेकिन उनको देखो ना जिनके पास में बहुत कुछ है, ये क्यों नहीं दिखते हैं हमारे को। उनको देख करके इस बात का निर्णय नहीं हो सकता है क्या, उनको देख करके ये बात नहीं सोच सकते हैं क्या कि इनके पास में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिला इनको। मुझे प्रसंग याद आता है राजा दशरथ का, दशरथ रामचंद्र जी के पिताजी, सब जानते होंगे, सबने सुना होगा। दशरथ का राज्याभिषेक कब हुआ जानते हैं आप, किस परिस्थिति में हुआ था, कब हुआ था दशरथ का राज्याभिषेक? पुराण उठाकर के देखें आप, आपको मिलेगी घटना। दशरथ के बड़े भाई थे अनंत रथ। दशरथ के पिताजी जब उन्होंने अपनी उम्र ढलान की तरफ थी, अंतिम समय आ गया था, उनको बहुत तुम्हारा राज्याभिषेक कर देते हैं कल, और मैं भिक्षा लेने के लिए चला जाता हूँ। अनंत रथ ने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी 2 बातें हैं, आप उनका जवाब दे देंगे। क्या बात है? पहली बात ये कि इस राजपाट में सुख है या नहीं है, 2 जवाब हो सकते हैं। आप जवाब देने उससे पहले मैं 2 बात कहता हूँ आपसे कि पिताजी इस राजपाट में सुख है या नहीं है। यदि आप ये कहते हैं कि इसमें सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और यदि आप ये कहते हो कि इस राजपाट में सुख नहीं है तो मुझे फंसाते क्यों जा रहे हो। आपने पूरे जीवन भर जो राजपाट किया है और अंतिम समय में जिस निर्णय पर पहुंचे हो, मैं उस निर्णय पर पहुंचने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ में दीक्षा लेना चाहता हूं। और दोनों ने साथ में दीक्षा ले ली कि क्या होगा राजपाट का। ऐसा कहते हैं कि 6 महीने के थे दशरथ और राज से लग करके चले गए, और ऐसा भी एक दूसरे पुराण में उल्लेख मिलता है कि पेट पर ही तिलक करके चले गए कि यहाँ का हम चले, और दोनों चले गए बाप बेटे और दीक्षा मिली, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। हम यही बात कहना चाहते हैं, सभी लोगों से बात करना चाहते हैं, जिस निर्णय पर ज्ञानी पहुंचे हैं उस निर्णय पर पहुंचने में जीवन बर्बाद कर, मिल गया है, ये दुर्लभ रत्न हमारे को मिल गए हैं, ये रत्न बर्बाद कर देने योग्य नहीं है, ये यूं ही फेंक देने योग्य नहीं है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करने योग्य है, कुछ न कुछ उपलब्धि होनी चाहिए। हम अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं कि हम डिसाइड करें, और सच बताऊं आपका अंतरंग स्वयं कहता है कि आप कैसे होने चाहिए, लेकिन अंदर से कुछ और है और दुनिया को दिखाना कुछ और चाहते हैं। सबकी यही हाल है, अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा बन करके रहना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो कुछ अपनी कमियां हैं जिसमें से पॉइंट है उसको छिपाना चाहते हैं, प्रकार हो सकते हैं, अपनी बातों से छिपाना चाहते हैं और अपने चेहरे के ऊपर लिपा पोती से छिपाना चाहते हैं। चेहरे पर यदि जरूरत पड़ रही हो तो ऊपर पॉलिश करके हमें दिखाना चाहेंगे, नहीं कि अभी तुम्हें जवाब मेरी उम्र ज्यादा थोड़ी नहीं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या शो करना चाहते हैं, काले करके शो करना चाहते हैं जो हम जवान हैं, दिखना चाहते हैं यदि वैसा बन जाएं तो आपका उद्धार हो जाए। क्या करना है अपने लोग, आप जैसा दिखना चाहते हैं लोगों के सामने आप वैसा बन जाएं, दिल से वैसा बन जाएं, अंदर से वैसा बन जाएं, ये काम करना है। ये बातें सच्चाएं कोई संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये सब ज्ञानियों को तो बहुत गुस्सा आता होगा, नहीं जैनियों के यहाँ तो वो क्षमा है ना, तो जैनियों को तो गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन मुसलमानों को बहुत गुस्सा आता होगा, हिंदुओं का जैनियों को नहीं आता ना गुस्सा, जैनियों को भी आता है, क्या बात कर रहे हो आप। ये चारों कषायें किसको होती है और किसको नहीं होती है, और कषायों से परेशान कौन होता है और कौन नहीं होता है, गुस्सा करने से कौन परेशान होता है, कौन सी गति का जीव, जैन के अजैन, दिगंबर के श्वेतंबर, तो क्या बात करते हो साहब, कचाएं किसी की नहीं है और बीच रास्ता किसी की मोहताज नहीं है, इंद्रभूति जिसको अपनाना है ये तो अमृत का दरिया बह रहा है अपने अंदर में, पुण्य में भी धर्म नहीं है ना, अपने अंदर में आनंद रस का दरिया बहता है, अंदर में प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है द्रव्य दृष्टि से, तो जो उसे पहचान ले, जो अंदर में अमृत का पान करे वो कर ले, इतनी स्वाधीनता है हमारे यहाँ, हर व्यक्ति धर्म कर सकता है, हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, जीव मात्र में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, पर पहचानने की देर होती है, हम नहीं पहचान पाते हैं इसलिए दुखी बने रहते हैं, ये हमारे दुख का कारण बना रहता है, क्यों दुखी है हम, कितनी भी भोग सामग्री हो जाए, कितनी भी वैभव हो जाए हमारे पास में, कितनी भी गाड़ियां हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, लेकिन जो टेंशन है ना, ये वो मिट्टी नहीं, आकुलता मिट्टी नहीं है, देवगति के भोग मिल जाए हमारे को, लेकिन आकुलता वो दुख का कारण है, उसकी वजह से दुखी रहता है व्यक्ति, ये टेंशन कैसे मिट सकती है बताओ, हमारे पास में ज्यादा पैसा होगा तो टेंशन मिट सकती है कि नहीं, कितना पैसा होगी टेंशन नहीं रहेगी, किस लिमिट के बाद में टेंशन मिट जाया करती है, नहीं नहीं पैसे से टेंशन थोड़ी ना मिटती है, हम यही कह रहे हैं भाई साहब, शारीरिक दुख की तुलना में मानसिक दुख ज्यादा खतरनाक होते हैं, देवगति के जीवों को भी मानसिक दुख होते हैं, शारीरिक दुख तो नहीं होता, मानसिक दुख होते हैं, और मानसिक दुख इतने ज्यादा होते हैं कि ये जीव आत्महत्या तक कर लेता है। आपने न्यूज पेपर में कभी कोई ऐसी घटना पढ़ी है क्या जिसमें ऐसा उल्लेख हुआ हो कि किसी व्यक्ति के सर में इतना तेज दर्द था कि उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली, मुझे कोई ऐसी घटना पड़ी ना, शायद नहीं पड़ी, उस व्यक्ति के घुटनों में इतना तेज दर्द था कि उसने आत्महत्या कर ली, ना कभी आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं आपने कई बार पढ़ी होगी کہ اس کا رزلٹ آیا, وہ رزلٹ لینے کے لیے گیا اور رزلٹ آنے کے بعد میں لوٹ کر کے گھر ہی نہیں آیا. پتا جی نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ دینے کے بعد میں اس نے جا کر کے آتم ہتیا کر لی, وہ لوٹ کر کے گھر نہیں آیا. کیسی گھٹنا ہے, کئی بار پڑی ہوگی. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس نے کیوں آتم ہتیا کر لی؟ پتا جی نے ڈانٹ دیا تو پیروں میں درد ہوا تھا کہ کمر درد کر رہی تھی, گھٹنوں میں درد تھا کہ سر درد ہو رہا تھا, شاریرک تکلیف نہیں تھی, مانسک. صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میں, شاریرک تکلیف کے کارن کبھی کوئی ویکتی آتم ہتیا نہیں کرتا, لیکن مانسک پیڑائیں اتنی ہوتی ہے کہ یہ جیو آتم ہتیا کر کے بھی سکھی ہونا چاہتا ہے. اور جو ٹینشن ہوتی ہے, جو مانسک ویدنا اور مانسک پیڑا ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کا یدی کوئی اپائے ہے تو وہ ہے تتو جان کی شرن. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اپائے جن وانی کی شرن, جین درشن, تتو ابھیاس, اس کے علاوہ دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے جو آپ کے مانسک سنکٹوں کو دور کر سکے. ارے ٹینشن کھڑ ماتر میں غائب ہو جاتی ہے, کیا بات کرتے ہو آپ؟ آپ پرابلم لے کر کے میرے سامنے آئے, کھڑ میں دور ہوتی ہے. آپ پرابلم تو بتائیں کیا پرابلم ہے. ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جس پرابلم کا سولوشن یہاں نہیں لکھا ہو, شاستر میں نہیں لکھا ہو. آگم میں ساری باتیں ملے گی, جن آگم میں ساری باتیں ملے گی. آپ گہرائی سے ایک بار پڑھیں تو صحیح. درلبتا کو جانے بھیا, کیونکہ چھوٹ جانے کے بعد میں پھر نہیں ملے گا, پھر موقع نہیں ملے گا. پھر آپ یہ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی تھی, جیسے کہاوت ہے نا, پھر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. آپ میں تو کئی بار ایسی باتیں کہتا ہوں پرتمانو یوگ پڑھ کر کے. پرتمانو یوگ میں ہم کتنی گھٹنائیں پڑھتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے وہ بعض لوگوں کا درشن دیکھا اور وہ ان کو ویراگیہ ہو گیا ہے نا. اس نے رینبو دیکھا آسمان میں اور ایک دم اس کو دیکھ کر کے سنسار کی کھن بھنگورتا کا بھان ہوا اور ویراگیہ ہو گیا. اور کوئی ایک راجا تھا, وہ راجا اروند, وہ تو اس نے مرر کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے اپنے سر میں ایک سفید بال دیکھا وغیرہ کی ہو گیا, وہ رکشا لے لی اس نے. اور یہاں تو ہمارے سارے بال سفید ہو گئے ہیں, تو بھی کہتا کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آخر یہ کیا چکر ہے. ہمارے دل کتنے کٹور ہو گئے ہیں, ہمارے ہردے اتنے کٹور ہو گئے ہیں. پہلے چانس نہیں تھا اور کتنے سی بات دیکھ کر کے ویراگیہ ہو جاتا تھا. کہتے ہیں آج تو ہم گھٹنائیں لائیو دیکھتے ہیں, ٹی وی کی اسکرین پر لائیو دیکھتے ہیں, سونامی کی لہریں اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں ہم, طوفان آتا ہوا دیکھتے ہیں, بھوکمپ میں لوگ مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تڑپتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں, اور سارے ایمبولینس لگ رہی ہے, لوگ لگ رہے ہیں, اور سارے والنٹیئرس لگ رہے ہیں ان کی سرکشا کے لیے, بھاگ دوڑ لگ رہی ہے, اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہمارے کو ویراگیہ نہیں آتا. روز نیوز پیپر کے اندر پڑھتے ہیں ہم, آج پلین کریش ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج وہاں بھوکمپ آ گیا, آج وہاں باڑھ آ گئی, اس میں لوگ مارے گئے, وہ بس کھائی میں گر گئی, اس کا یہ ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا. اور وہ ابھی 2011 میں لیٹے کبھی جاپان میں جو ریڈیشن کا خطرہ تھا, کیا تباہی مچی ہے بھائی, آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا, ٹی وی کی اسکرین پر ہم نے دیکھا, دماغ چکراتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں. ایسا لگتا تھا پورا جاپان بالکل سب ختم ہو گیا, یہ ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, وہ تڑپڑاہٹ ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اور ہم ہاتھ میں چائے کا پیالہ لے کر کے اور مستی سے ٹی وی چینل گھماتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. چائے کا پیالہ گرنا تو بہت دور کی بات ہے, بھیجتا تک نہیں ہمارا, گھبراہٹ ہوتی ہے تھوڑی سی, لگتا ہے ایسا. گجرات میں بھوکمپ آیا بھج میں, تو تہس نہس ہو گیا, سب ختم ہو گیا, بالکل نگر ختم ہو جاتے ہیں, دیش کے دیش ختم ہو جاتے ہیں. اور آج کے اس یوگ میں جبکہ لڑائیاں بھی بہت وتراگی ہو گئی ہیں. کیسی وتراگی لڑائیاں؟ پہلے تو لڑائیاں اس پرکار کی ہوا کرتی تھی کہ ایک ویکتی دوسرے کو مارتا تھا تو مارنے والے کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میں کسے مار رہا ہوں, اور مرنے والے کو بھی پتا ہوتا تھا کہ مجھے کون مار رہا ہے. ہندو نے یہ تیر چلایا ہے اور مسلمان کو مارا ہے تو پتا تو ہے کس نے کس کو مارا ہے. لیکن آج کل کی لڑائیاں تو ایسی ہوتی ہے جس لڑائیوں کے اندر بم گرتا ہے اور پتا نہیں کس نے پھینکا اور کون مرا اور کتنے مر گئے اور کیا ہوا, بالکل وتراگ بھاؤ سے. اس زمانے میں کون ویکتی کب مر جائے, ایک دم موبائل ہم چارج کر رہے تھے اور ایک دم کرنٹ آیا, جھٹکا لگا اور پھٹ گیا, مر گیا. کتنی گھٹنائیں ابھی ہو گئی ایسی, चार्जिंग होते होते हम मोबाइल को सुन रहे थे, मोबाइल फट गया, मर गया। ऐसी सच्ची घटनाएं रोज न्यूज़पेपर का विषय बनती है। अभी थोड़े समय पहले हमारे यहाँ जयपुर में एक व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्ति के दो बेटे थे, एक 22 साल का बेटा और एक 24 साल का बेटा। बड़ा बेटा दिल्ली में जॉब करता था और हर फ्राइडे नाइट को वो आता था वापस जयपुर, और संडे नाइट को वापस चला जाता था, दिल्ली में जॉब करता था। फ्राइडे नाइट को वो दिल्ली से बैठा बस में, और बस में बैठ करके जयपुर आया। जयपुर आकर के बड़ी चौपड़ बस स्टैंड में हमारे वहाँ उतरा। उतरने के बाद में छोटा भाई बाइक लेकर के उसको लेने के लिए आया, बाइक पर उसको बिठाया, बड़े भाई को दोनों पास में यहाँ पहुँच रहे थे। रास्ते में ट्रक ने चक्कर मार दी और दोनों वहीं गए। आप पूछ सकते हैं उसके पिताजी क्या हाल, कोई बेटे थे जवान बेटे 22 साल का और 24 साल का, दोनों में ऐसी घटना उनके साथ तो घटी है, ऐसी घटना अपने लोगों के साथ घटी है, घटती नहीं है। दिन नहीं झेलता है हमारा, लगता नहीं है हमारे को क्या होगा, क्या हो जाएगा। आप पूछते हैं अगले भाव में क्या होगा, लोगों को फ्यूचर की बहुत लगती है, फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है, प्लानिंग करते रहते हैं हम, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। कौन से फ्यूचर के लिए, जब न दांत रहेंगे न आते रहेगी काम से। आप सोचिए तो सही, हम उस फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कौन से फ्यूचर के लिए, वो सड़ी गली अवस्था जिसमें कुछ करने के योग्य नहीं रहे, जिसमें डॉक्टर मीठा बंद कर देगा, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट, आप मीठा नहीं खा सकते हो, आप हलवा नहीं खा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, उस फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, सोचना पड़ता है सब अपने फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर, फ्यूचर की बात तो हम बताते हैं तुम्हारे को, तुम जिस फ्यूचर, सिर्फ 15 साल ही है तुम्हारा फ्यूचर, 20 साल के फ्यूचर की बात करते हो, हम अनंत काल के फ्यूचर की बात करते हैं। ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में वो फ्यूचर होगा कि पास्ट होगा, फ्यूचर ही होगा। सब क्या होगा आपका, मर के कहाँ चले जाएंगे, कौन से भाव में जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे, वहाँ क्या व्यवस्था होगी आपकी, खाने पीने को मिलेगा कि नहीं, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था होगी कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं, दो टाइम का, उस व्यवस्था के बारे में सोचा है कि नहीं आपने। एक बार गंभीरता से आप गहराई से चिंतन कीजिए इसके बारे में, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचने के अलावा और कुछ करता नहीं है। अब तक सोचते थे किसी और तरह से, अब सोचिए किसी और तरह से। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद भीगे जल में अंजलि तो जल है। बहुत सुंदर चर्चा की है। तो वो ऐसा कहते हैं, किसी से पूछा उनसे, गुजरदास जी की पंक्तियाँ हैं, किसी ने उनसे पूछा, गुजरदास जी एक बात बताओ, कोई मिलता है तो पूछता ही है, सब कुशल मंगल तो है, ठीक ठाक तो है। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये सब लोग यही कुशल पूछते हैं, एक बार इन सबको बता ही देना चाहिए। उन्होंने बता दिया, एक छंद लिख करके 8 पंक्तियों का छंद लिखा। उन्होंने क्या लिखा, जो ही दिन कटे कोई आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है। देह नित्य क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी, जरा मतलब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी, मृत्यु रूपी शिकारी सांप मार के खड़ा है। कितनी बातें कह दी उन्होंने, जैसे जैसे दिन कट रहा है वैसे वैसे आयु की स्थिति घटती चली जा रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे हमारे को क्या लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। अज्ञानी को लगता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और ज्ञानी क्या कहते हैं, अरे तेरी उम्र कम हो रही है, अब मृत्यु नजदीक आ रही है। एक एक दिन करके अंजलि के जल के समान ये जीवन पूरा होता चला जा रहा है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजर बीत आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, एक पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही, करुण होती जा रही। का हो रहा है, साल पूरा होता है और आज बर्थडे, बर्थडे के बर्थ डे कौन सा दिन है? महीने में कहते हैं साल गिरा, साल गिरा, एक साल और गिर गया। सच है ना ये बात, ये साल गिरा ही है ना। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हम वो केक लाते हैं और कैंडल जलाते हैं उसके ऊपर, कितनी जलाते हैं? जितने साल हो गए। और जलाता कौन है? घर के बड़े बुजुर्ग। और बुझाता कौन है? वो बड़े बुजुर्ग जलते हुए कैंडल सामने रख करके कहते हैं कि बेटा ये जलते हुए चिराग, इतने वर्ष ये मनुष्य जीवन के तुम्हारे को मिले हैं। वो भूख मार करके कहता है कि बाबा जी, बाबू जी, हमने सब अंधकार में बिता दिए। जितना प्राप्त हुआ सब बीत गया, जितना बीत गया है आप अपने उस पास्ट लाइफ के बारे में दृष्टि डाल करके देखेंगे, आप ये महसूस करेंगे अरे कैसे इतना जीवन हो गया, अरे मैं कैसे इतना बड़ा हो गया, मेरी कैसे इतनी हो गई। और ये तो निश्चित है कि हम जितना बिता चुके हैं अब उतना हमारे पास ही बाकी नहीं है। तो जितना बीत गया है अब उतना तो और शेष नहीं है ना हमारे पास में, अब तो नहीं है उतना। फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर क्या कर रहे हैं? टाइम तो कम होता जा रहा है। क्या लिखा उन्होंने, जो ही दिन कटे तो ही आयु में अवधि घटे, घट रहा है। बूंद बूंद जीते जैसे अंजलि को जले हैं, और देह नित्य क्षीण होत, शरीर क्षीण होता जा रहा है, शक्ति सामर्थ्य धीरे धीरे कम कम होती जा रही है, उसमें बैठने की शक्ति नहीं बची है, ताकत नहीं बची है। पहले जो जवानी में जो जोश था, जो ताकत थी, वो अब नहीं बची है। इस यौवन को पाकर क्यों इखलाते हो इतना, इस यौवन को पाकर क्यों इखलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम दिए बैठा है। आएगा वो बुढ़ापा, वो अवस्था आएगी, दूर नहीं है वो अवस्था। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है, देह नित्य क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, सके अंत तक अहेरी, मृत्यु की शिकारी ताक मार के खड़ा है। आवे जरा नेरी, सके अंत तक अहेरी, पर वो नजीक जात नर वो निपल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। लोग पूछते हैं ठीका तो है सब कुशल, क्या कुशल कहें आपको, हालत क्या है, असली हालत क्या बताएं आपको, स्वरूप क्या बताएं, मेरा क्या स्वरूप है और दशा क्या हो रही है। ये तो समझ जाए तो ठीक है, जो समझ जाए, जब समझ जाए, जब जागो तभी सवेरा है, जब समझ जाए तभी सवेरा है, नहीं तो फिर पछताना ही है, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। देव लोग तरसते हैं, देव लोग तरसते हैं इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए, आखिर कैसी होगी ये मनुष्य पर्याय। मेरे को वो प्रसंग ध्यान आता है भगवान महावीर स्वामी के समव चरण का। भगवान महावीर स्वामी का समव चरण विपुलाचल पर्वत पर आया सबसे पहले। जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समव चरण आया तो वहाँ एक राजा राज्य करता था, राजा मनक, बहुत प्रसन्न हुआ, मनी मन इतना प्रसन्न हुआ कि बहुत समय से किसी ऐसे अवसर की तलाश थी, आज वो प्रसंग आ गया है। तो कौन से अवसर की तलाश थी वो तो सुन लो एक बार आप। उसको इस बात की तलाश थी कि मेरे पास में जितना वैभव है ना, इस वैभव के प्रदर्शन का राइट टाइम तो अभी आया है। इतने लोग आएंगे, उनके इतनी बड़ी सभा लगेगी, लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आएंगे, और मेरे पास में कितना वैभव है आखिर में लोग देखें तो सही। पूरी तैयारी उसने उसकी कर ली, और अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि लोग भी देखेंगे कि अपने सम्राट के पास में, राजा के पास में कितना अपार वैभव है। इंद्र को उसके बारे में पता लगा, उसके उन परिणामों के बारे में। जैसे ही इंद्र को उस राजा के परिणामों के बारे में पता लगा, तो इंद्र अपनी चतुरंगिनी सेना और अपने लव आ गया उसको, ठहरा वो साथी के साथ। और जब इतना इंद्र का वैभव देखा, इतना का अभिमान हो गया इंद्र के वैभव के सामने, ऐसा ऐरावत हाथी और इतने देव और एक एक ऐरावत हाथी के आठ आठ मुख और एक एक मुख के अंदर 32-32 दांत और एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर और एक एक सरोवर में 32-32 कमल और एक एक कमल के अंदर 32-32 पंखुड़ियां और एक एक पंखुड़ी के ऊपर एक एक देवांगना नृत्य करती हुई चलती है। जरा सोचो तो सही है, उस ऐरावत हाथी का स्वरूप कैसा होगा, वो देख करके उसका सारा का सारा मान जल गया। बात खत्म हुई, रात गई, बात गई, अभिमान हो गया। भगवान महावीर स्वामी के समूल चरण में पहुंचे और दिव्य ध्वनि सुनने के पश्चात, दिव्य ध्वनि सुनने के बाद उस राजा ने इंद्र को ललकारा कि हे इंद्र, तूने वैभव में मुझे परास्त कर दिया, तूने मेरा मान खंडित कर दिया, तूने अपनी शक्ति बल योग्यता सामर्थ्य इन सब में मुझे परास्त कर दिया, लेकिन आज मैं तुझे ललकारता हूँ, मैं भगवान महावीर स्वामी के समूल चरण में दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूँ, मुझे परास्त करने की हिम्मत हो तो आपको। इंद्र भी रुक गया। आप सोचिए क्या कल्पना करते होंगे वे इंद्र लोग, वे देव लोग क्या सोचते होंगे, कह रहे मनुष्य पर्याय यदि प्राप्त हुआ है तो ये संयम अंगीकार करने के लिए मिला, ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ होने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में ये सामर्थ्य है कि ये सम्यक दर्शन पूर्वक संयम अंगीकार कर सके, गुण स्थान चढ़ सके, भगवान बन सके, परमात्मा बन सके। देव लोग तरसते हैं इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए, नहीं मिलती है, आसान नहीं है, देव मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं। एक बार ये मनुष्य पर्याय जीत रही है कितने समय में मिलेगी, आप कल्पना कर सकते हैं कितने टाइम में मिलेगी। हमने अभी वो रत्न का उदाहरण लेकर के आपसे बात करना, मैं आपको सच बात बतलाता हूँ, आगम की आप चाहते बोल करके देखना, एक इंद्रिय पर्याय में यदि चला जाता है तो वहाँ उत्कृष्ट परिभ्रमण का काल असंख्यात कल्प काल का संभाले अत्यात कल्प काल। अभी आगे तो सुनो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति, इनमें असंख्यात कल्प काल तक परिभ्रमण करने के पश्चात ये जीव वहाँ से इतर निगोद में चला गया तो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है, पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है, ये पुद्गल परावर्तन का स्वरूप बताते हुए ऐसा कहते हैं आप कितना धीरूभाई पंडित, आप पूछना पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा होता है, आगम खोल करके देखो आप, कोई भी शास्त्र खोल करके देख लेना आप, कोई बाधा नहीं है, दिगंबर हो चैतंबर हो कहीं कोई बात फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो करणानु जो सैद्धांतिक जो बातें हैं कहीं फर्क नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है, एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अभी नहीं ख्याल में आई बात, सागर कितना बड़ा होता है, कभी चलेंगे कभी चर्चा तो मैं समझाऊंगा आपको सागर कितना बड़ा होता है, जो अपने पास टाइम की मर्यादा है जब पहुंचने के, समझिए आप कैसा लगता है अपने को, सागर तो सागर ही है, हमारी कल्पना से बाहर जाती है वो बात, सागर हमारे ख्याल में नहीं आता, कितने सागर, एक सागर, दो सागर, तीन सागर, चार सागर, पांच सागर, बढ़ते 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 अनंत सागर बीत जाए, कितनी बार, एक बार, फिर दोबारा एक सागर तीन सागर करते हुए अनंत सागर दूसरी बार बीते, फिर अनंत सागर तीसरी बार बीते, फिर अनंत सागर चौथी बार बीते, फिर अनंत सागर, 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 ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीत जाए तब जाकर के एक पुद्गल परावर्तन होता है, और ऐसा 2.5 पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल है इतर निगोद का, फिर तो आ जाता होगा तरसने की, नहीं 2.5 पुद्गल परावर्तन करके एक पृथ्वी का नदी में आ जाता है, असंख्यात कल्प काल बिताता है, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए इतर निगोद में चला जाता है, और फिर निकल करके पृथ्वी का हो जाता है, और असंख्यात कल्प काल पूरे करके एक दो पुद्गल परावर्तन के लिए फिर इतर निगोद में चला जाता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, असंख्यात पुद्गल परावर्तन करे तब जाकर के इस जीव को कदाचित नट पर्याय की प्राप्ति होगी। दुर्लभ है। इस मनुष्य पर आई थी घड़ी कितनी दुर्लभ है। जैन शतक का एक लोग खंड बता करके मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ। बहुत बड़े बात उन्होंने लिखी मनुष्य पर्याय के संदर्भ में। ये कहते हैं काहू घर पुत्र जायो काहू के भी योग आयो काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। जहाँ भान उगत है उठाह जीत गान देखे सांझ सामे ताही सामे हाय हाय परी है। तो ऐसी जग रीति को न देख भय जीत होए हा मत हरी है। और मानुष जन्म पाए कोवत भी हाय जाए कोवत करोड़ में घड़ी है। क्या कह दिया उन्होंने आज बोलिए खत्म नहीं आया होगा बतला तो क्या कह दिया। काहू घर पुत्र जायो किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ काहू के भी योग आयो किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ किसी के यहाँ योग हुआ है ऐसा हो जाता है। तो एक ही घर में हो जाता है पुत्र जन्म और मरण जन्म मरण परण तीनों एक साथ हो जाते हैं। बनारसी राज जी के साथ में जन्म मरण परण तीनों घटनाएं एक साथ एक ही दिन हुई थी। पुत्र जन्म ना नहीं मरण पुत्र वधु आगोन और तीनों कारज एक दिन भये एक ही भवन। बनारसी राज जी ने अपने आप लिखा जन्म भी मरण भी और विवाह भी तीनों एक ही दिन एक ही घर में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है। तो किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और किसी के यहाँ मरण हुआ हो जहाँ जन्म हुआ है वहाँ उत्साह से गीत गान देखे जा रहे हैं और जहाँ मरण हुआ है वहाँ रोना पीटना चल रहा है। जहाँ सूर्योदय होता है वहीं शाम को सूर्यास्त भी दिखाई देता है। जब सूर्योदय होता है तो प्रसन्न होता है और सूर्यास्त होता है तो चेहरा मुड़ जाता है। जहाँ भान उगत उचाह जिसे गान देखे सांझ सामने ताही स्थान उसी स्थान पर हाय हाय करी। और कहते हैं ऐसी जग रीत को न देख भय जीत होए हा नर मूर्ख तेरी मति कौन हरी है। तो कहते हैं हे मूर्खाधिराज हे मूर्ख शिरोमणि क्या उपमा देवे तेरे को तेरी बुद्धि किसने हर ली है तेरी बुद्धि को क्या हो गया है। ऐसी घटनाएं देख करके तुझे वैराग्य नहीं होता तुझे लगता नहीं है हृदय से ऐसा नहीं लगता है कि आज इसके साथ में ऐसी घटना घट गई है यदि मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी तो क्या होगा लगता नहीं है ऐसा। ऐसी जब इसी को न देखी भाई अरे मूर तेरी मुट्ठी कौन है हरी है। मानुष जन्म पाए सोने भी हाय जाए जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सोने की जिंदगी निकल गई जीवत जम आयो खाए कर रात में खाते नहीं दिन में खाना खाना लगा रहता दिवस गम आयो खाए कर और रात गवाई सोए और भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की सोए। क्या कह रहे हैं वो काहू घर पुत्र जाए काहू के भी योग आयो काहू डाले रंग काहू रो और वही डरी है। जहाँ बान उगत है उचाह गीत गान देखे सांझ समय ताही थाने हाय हाय परी है। और ऐसी जग रीति को न देखे भय गीत होए आहा नर मूर तेरी मति कौन हरी है। और मानुष जन्म पाए सोवत भी हाय जाए होवत करोड़ की एक एक घड़ी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब लोग हमारे सामने ये कहते हैं अरे जानते हो मेरी कितनी इनकम है कमाते हैं अपन करोड़ों कमाते हैं रोजाना करोड़ों कमाते हैं रोज पर डे से इनकम है घाटे का काम ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि तुम हर क्षण घाटे का बोला कर रहे हो तुम्हें लगता है कि हमारे की क्या कमी है हमारे क्या नुकसान है। और ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म की एक घड़ी एक एक क्षण मनुष्य जन्म का इतना दुर्लभ है कि ये मनुष्य जन्म का एक क्षण भी आप करोड़ों अरबों की कीमत देने को बढ़ाया नहीं जा सकता बढ़ा सकते हैं आप इतना कीमती है मनुष्य जन्म। ठीक है खोवत ये दिन भर बर्बाद कर रहा है मनुष्य जन्म जो बहुमूल्य है उसे बर्बाद करके 2-5 करोड़ कमा करके ये कहता है कि मैं बहुत कमा लिया। अरे कमा लिया कि नुकसान का काम किया तूने? कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा लगा करके और उसके इंटरेस्ट जितना भी 2% इंटरेस्ट मिलता हो और इतना भी यदि उससे नहीं निकाल पाए और फिर कमा करके कहे कि मैं कमाता हूँ, घटेगा काम करता है, नुकसान का काम कर रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं कि तुम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यदि छोड़ रहे हो तो नुकसान का काम कर रहे हो, और कितना नुकसान काम है? करोड़ों जितना, अरे करोड़ों को लिखा है 200 साल पहले, 400 वर्ष पहले की पंक्तियाँ हैं, 400 वर्ष पहले का करोड़ और आज का कितना होगा जरा उसको कैलकुलेट करके देखो तो पता लगेगा कितना है। हर 20 साल में एक दिन भी बढ़ जाती है। यहाँ तो सब डॉलर में चलता है, मैं तो इंडिया की करेंसी की बात करता हूँ। सन 1940 की बात बतलाता हूँ जो सुनी है मैंने लोगों से। सन 1940 में 10 रुपया महीना लोगों की इनकम थी और रहता था। उसके ठीक 20 साल बाद 1960 तक यदि हम पहुँचते हैं तो 10 से आगे 1-0 और बढ़ गया। 100 रुपए मंथली इनकम में घर का खर्च मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मल फैमिली और 1980 तक पहुँचते हैं तो 1000 रुपए महीने में 100 के आगे 1-0 और बढ़ गई, 20 साल बढ़ गए, 1000 रुपए महीने के अंदर अकाउंट घर का खर्च। और 1980 से सन 2000 तक यदि पहुँचते हैं एक सामान्य परिवार का खर्चा 10,000 रुपए महीने का खर्चा, और जो 1-0 और बढ़ गई और 10,000 के आगे और 20 साल 2030 जो कि निकट है, 10,000 के आगे 1-0 और बढ़ा दीजिए, माने नियर अबाउट आप समझिए 80,000 लाख रुपए के आसपास के बिना आज बहुत मुश्किल होता है। कितना कठिन लगता है? हर 20 साल में 1-0 बढ़ रही है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने 10 रुपए से शुरू किया और 1,00,000 रुपए तक आ गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं हम। 400 साल पहले उन्होंने लिखा कि मनुष्य जन्म का एक एक क्षण करोड़ों के बराबर है। 400 साल में कितने 20 वर्ष निकल गए और करोड़ों का कितना हो गया? तो बहुत बहुमूल्य है जो मनुष्य जीवन हमको बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बर्बाद कर दिया है हमने, अब खोने योग्य नहीं है। यह विधि गए ना मिले सुमणि जोग, बीती का ही विसार दे आगे की सिद्ध नहीं। जो बीत गया है तो भूल जाने योग्य है, छोड़ देने योग्य है। अब जो बचा है उसने आत्म कल्याण कर लिया। पाप को छोड़ो, शुभ भावों में अपना काल व्यतीत करो और शुभ भावों में काल व्यतीत करते हुए भी शुभ के प्रति उपाधेय बुद्धि का त्याग करो। छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, जब जब शुभ के निषेध की चर्चा आती है तो लोग मंदिर आना छोड़ने की बात समझते हैं, लोग स्वाध्याय कर देना छोड़ने की बात समझते हैं। अरे भाव आप सुनने को यही कहते हैं, भाव तो यही है, क्या करेंगे मंदिर आके? तो इसलिए मंदिर आना इस भाव यही है, ये बात हमारे को यहाँ सुनने को मिलती है। ये बात जानने के लिए, ये बात समझने के लिए आना अपने धर्म, और 2-4 मिनट में मैं धर्म समझा देता हूँ आपको। असली धर्म किसका नाम है? 2-4 मिनट युवा से पास धर्म किसका नाम है समझ लो आप, परमानेंट। न पाप में तो धर्म होता ही नहीं है और पुण्य में भी धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता का नाम है, धर्म पराधीनता का नाम है। जहाँ जहाँ पराधीनता है वहाँ धर्म नहीं है। पूजन करने में पराधीनता है, धर्म नहीं है। मंदिर आने में पराधीनता है, धर्म नहीं हो सकता है। माला फेरने में पराधीनता है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म स्वाधीन क्रिया है अंदर से। अपने स्वभाव को जाने पहचाने बिना धर्म नहीं होता। मनुष्य जन्म से मुक्ति की प्राप्ति की जाती है, प्रत्येक जीव अपने को जान सकता है, पहचान सकता है, वही असली धर्म है, वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान होता है। अपने को जानने का नाम सम्यक दर्शन, अपने को जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और अपने में लीनता का नाम सम्यक चारित्र, और उमा स्वामी महाराज कहते हैं वो कुमार। चतुर्थ सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? कौन कौन मानते हैं? सब मानते हैं। दिगंबर मानते हैं, सितंबर भी मानते हैं, सानकवासी भी मानते हैं, तेरापंथी मानते हैं कि नहीं, और श्रीमद वाले मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं इस चीज को। अरे मानते ही तो नहीं है। लोगों को ये शिकायत रहती है कि पंडित जी बच्चे हमारे हमारी मानते नहीं है, बच्चे हमारी सुनते नहीं है, इस जीव की इच्छा रहती है, इसकी भावना रहती है, मेरी सब माने, ये भी मेरी माने, ये भी मेरे हिसाब से चले, अरे पूरी सोसाइटी मेरे हिसाब से चले, सब मेरा कहना माने, घर में मेरा कहना चले, परिवार में मेरा कहना चले, समाज में मेरी चले, सब जगह मेरा कहना माने, तो कितना अच्छा रहे। कि हाँ बेटा अच्छी अच्छी बात कह रहा है तू, सब तो तेरी माने और तू भगवान की भी नहीं माने, सोचता है अरे भैया कोई माने के नहीं माने, लेकिन भगवान की यदि हमने मान ली तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आज तक भगवान को बहुत सुनाया है, भक्ति के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, अब प्रवचन के माध्यम से एक बार भगवान की बात को सुन ले, स्वाध्याय के माध्यम से एक बार भगवान क्या कहना चाहते हैं उस बात को सुने, समझें और अपने अंदर में उतारे और अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ कर इसे सार्थक करें, उसी भावना से।